वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंध 4 अध्याय 20 श्लोक संख्या 9। या स्वधर्मेण माम नित्यम या स्वधर्मेण माम नित्यम निराशी श्रद्धयान्वितः भजते सनकैस्तस्य मनोराजन् प्रसीदति। या स्वधर्मेण माम नित्यम् निराशि श्रद्धयान्विता भजते सनकैस्तस्य मनोराजन् प्रसीदति। या स्वधर्मेण माम नित्यम् निराशि श्रद्धयान्विता भजते सनकैस्तस्य मनोराजन् प्रसीदति। या स्वधर्मेण माम नित्यम् निराशि श्रद्धयान्विता भजते सनकैस्तस्य मनोराजन् प्रसीदति। स्वधर्मेण माम नित्यम् नासि श्रद्धयान्तं ते सनकैस्तस्य आजन् प्रसीदति। अस्वधर्मेण माम नित्यम् निराशि श्रद्धयान्वितः कैस्तस्य राजन् प्रसीदति। माता जी, या स्वधर्मेण माम नित्यम् भजते सनकैस्तस्य राजन् प्रसीदति। यः जो भी स्वधर्मेण अपने वृत्ति परक कार्यों के द्वारा माम मुझको नित्यम नियमित रूप से निराशी बिना किसी उद्देश्य के श्रद्धया श्रद्धा तथा भक्ति से अन्वितः युक्त होकर भजते पूजता है सनकैः धीरे धीरे तस्य उसका मनः मन राजन हे महाराज पृथु प्रसीदति पूर्णतया तुष्ट हो जाता है। अनुवाद श्री प्रभुपाद द्वारा। भगवान विष्णु ने कहा, हे राजा पृथु, जब कोई अपना वृत्तिपरक कर्म करता हुआ किसी भौतिक लाभ के उद्देश्य के बिना मेरी सेवा में लगा रहता है तो वह अपने मन में उत्तरोत्तर संतुष्टि प्राप्त करता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा विष्णु पुराण से भी इस श्लोक की पुष्टि होती है। वृत्तिपरक कार्य को वर्णाश्रम धर्म कहते हैं और यह भौतिक तथा आध्यात्मिक जीवन के चारों वर्गों और आदर्शों पर लागू होता है, यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। जो कोई वर्णाश्रम धर्म पद्धति के अनुसार कर्म करता है और फल की इच्छा नहीं करता वह क्रमशः संतुष्ट होता जाता है, जीवन का परम उद्देश्य वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए श्री भगवान की भक्ति करना है। भगवद गीता में इस प्रक्रम को कर्मयोग कहा गया है। अन्य शब्दों में हमें केवल भगवान की तुष्टि तथा सेवा के लिए कर्म करना चाहिए, अन्यथा हम सब कर्म फलों के बंधन में फंस जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म में लगा हुआ है किंतु भौतिक व्यवसायों का उद्देश्य लाभ नहीं होना चाहिए, अपितु हर एक को चाहिए कि वह कि अपने अपने कर्मों के फल प्रदान करें। ब्राह्मण को विशेष रूप से अपना कर्म भौतिक लाभ की दृष्टि से न करके श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए। इसी प्रकार से क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र को भी कर्म करना चाहिए। इस जगत में हर व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवसाय में लगा है, किंतु ऐसे कर्मों का उद्देश्य श्री भगवान को प्रसन्न रखना होना चाहिए। भक्ति अत्यंत सरल है और कोई भी इसे अपना सकता है। जो जिस रूप में है वैसे ही रहे, उसे अपने घर में परमेश्वर के अर्चा विग्रह को स्थापित भर करना होगा। यह विग्रह चाहे राधा कृष्ण का हो या लक्ष्मी नारायण का। इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र अपने परिश्रम के बल पर अर्चा विग्रह को पूज सकता है। चाहे जो भी वर्णाश्रम धर्म हो, मनुष्य को श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, समर्पण आदि के द्वारा भक्ति करनी चाहिए। इस प्रकार मनुष्य अपने को भगवान की भक्ति में लगा सकता है। जब भगवान सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं तो जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाता है। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पथे गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भज श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। कल ऋतु महाराज जो कि महाराज जिनके यज्ञ में पृथु महाराज जिनके यज्ञ में भगवान विष्णु इंद्र के साथ पधारे हैं और इंद्र और पृथु महाराज के बीच में जो तनाव हो गया था, द्वेष हो गया था, उसको समाप्ति करने के लिए उस पे परस्पर दोनों के वैमनस्य को समाप्त करने के लिए क्षमा याचना करने के लिए पृथु महाराज को उत्साहित कर रहे हैं। क्योंकि पृथु महाराज 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे और उनके यज्ञ के उत्कर्ष को देख करके भगवान इंद्र उनके यज्ञ में विघ्न डाले थे और बहुत बहुत अपराध किए थे। इस पर पृथु महाराज को क्रोध आ गया, इंद्र की इस प्रकार की गुस्ताखी या विद्वेष को देख करके और कुचाल को देख करके उनके मन में क्षोभ हो गए और उन्होंने इंद्र को मारना चाहा, लेकिन ऋतुजों ने कहा कि आप यज्ञ में हैं इसलिए आप क्रोध मत कीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, हम ही लोग इंद्र को मार देते हैं। और इस बात से पृथु महाराज सहमत हो गए थे, मैंने उसका निषेध नहीं किया। इंद्र को जो यज्ञ का भोक्ता है, यज्ञ में जिसकी पूजा होती है, उस देवराज इंद्र को ही मारने का प्रयास, समाप्त कर देने का, यज्ञाग्नि में हवन कर देने का प्रयास हुआ, तो ब्रह्मा जी ने आकर के उसमें। अब यहां पर भगवान इंद्र को लाए हैं कि क्षमा मांग लो पृथु महाराज से, और पृथु महाराज को समझा रहे हैं कि आप को देवराज इंद्र से बैर रखना, मन में विद्वेष रखना उचित नहीं है, आप हमारे भक्त हो, आप सबका पालन पोषण करने वाले राजा हो, आप महान हैं, तो आप हमारी भक्ति कीजिए, हमारी सेवा कीजिए, आप इसी में संतुष्ट रहिए, दूसरा दूसरे के प्रति द्वेष और द्रोह बुद्धि का त्याग कर दीजिए। तो उसी को समझाने के लिए बहुत सी बातें कर रहे हैं, हम तो इंद्र को लाए हैं, क्षमा मांगना चाहते हैं और मैं चाहता हूं कि आप भी इसको क्षमा कर दें, इस पर ध्यान देने के लिए। इंद्र की पूजा करना राजा का स्वधर्म होता है, तो उसको मारना ठीक नहीं है, बल्कि आप राजा हैं तो इसे इंद्र का कदर कीजिए, इनका आदर कीजिए, इनकी इन पर दोष मत देखिए, इनको क्षमा कर दीजिए। तो हरे कृष्ण। तो इसमें बतला रहे हैं कि वास्तव में यह जीव शरीर नहीं है और कोई भला या बुरा, अपकार या सम्मान शरीर का होता है, आत्मा इस शरीर से पृथक है, इसलिए उसका कोई अपमान और सम्मान नहीं है, शरीर का होता है। और आपको समझना चाहिए कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा हैं, आत्मा अमर अविनाशी और निष्प्रभावित होता है, वो किसी भी प्राकृत सांसारिक हलचल से वो प्रभावित नहीं होता है। शरीर प्रभावित होगा लेकिन आत्मा सदैव अप्रभावित रहता है। और इस प्रकार से उस आत्मा को जो ज्ञान के द्वारा समझते हैं और जानते हैं, तो अपने को किसी भी कर्म से, सुख से, दुख से, हानि से, लाभ से अप्रभावित समझते हैं। और इस प्रकार से जब अपने को जीव सुख दुख हानि लाभ प्राकृत संसार के गुणों से अक्षोभित रहता है, क्षुब्ध नहीं होता है, तो वह तो जो आत्मस्थ पुरुष है, सबके अंदर जो भगवान है, अध्यक्ष रूप से परमात्मा है, उनको वेद पुरुष, वह पुरुष उनको जानने लगता है, जान जाता है। और जो ब्रह्म को, भगवान को, जो सबके नियामक और अध्यक्ष हैं, उनको जानता है, तो नाज्यते प्रकृतिस्थोपी तद्गुणई, वह प्रकृतिस्थ होता है, तीन गुणों से बना हुआ, यह सत्व रज और तम, इन तीन गुणों से और इनके सम्मिश्रण से यह प्राकृत जगत बना हुआ है और शरीर भी उन्हीं से बना हुआ है। तो नाजते प्रकृतिस्थोपी, प्रकृति में स्थित रहते हुए भी, इस संसार प्राकृत जगत में स्थित रहते हुए भी और खास करके शरीर में स्थित रहते हुए भी, शरीर में अहम भावना होते हुए भी, वह तद्गुणई है, प्रकृति के साथ शरीर के गुणों से नाज्यते, लिप्त नहीं होता है, अंजित नहीं होता है, अंजन लगा देने से आंख में लगाते हैं तो काला हो जाता है, थोड़ा अंजित हो जाता है, ढक जाता है। इस प्रकार से प्राकृत गुणों से जीव ढकता नहीं है, लिप्त नहीं होता है। और इस प्रकार से जो हमेशा अपने ज्ञान को बनाए रखता है, समयी स्थित, वह मुझ में स्थित हो जाता है, मतलब परमात्मा में, भगवान में उसकी स्थिति हो जाती है, उस वह प्रकृति के गुणों को छोड़ देता है और अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। और संसार के शरीर, जैसे शरीर को जलना, मरना, कटना, सुधा, पिपासा आदि धर्म होते हैं, उससे बाधित नहीं होता है, वो इनसे परे होकर के और मुझ में, और इस प्रकार से इनसे नहीं अंजित होता है, इनसे लिप्त नहीं होता है, तो सौमयी स्थित, उस मुझ ब्रह्म में स्थित हो जाता है। जैसे मैं सच्चिदानंद हूँ, सत्चित और आनंदमय हूँ, उसी प्रकार से उसकी भी सत्चित और आनंदमय स्थिति हो जाती है। तो यह है ज्ञान, ज्ञानावस्थित, ज्ञान में उसकी स्थिति हो जाती है। ज्ञान का मतलब है मैं देह नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और इस शरीर में हमारी आत्मा की स्थिति है, मैं देह नहीं हूं, आत्मा हूं, और अलग अलग जितने भी शरीर हैं उन सब शरीरों में सर्व क्षेत्रज्ञ के रूप में भगवान श्री कृष्ण हैं, परमात्मा हैं। इस बात को जानना यही ज्ञान है। तो भगवान ने गीता में 3वें अध्याय में बात कही है, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रे सुभारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर ज्ञानम यज ज्ञानम मतम मम। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम, और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान, तो एक तो वैयक्तिक क्षेत्रज्ञ हैं, हर क्षेत्रों में रहने वाले जीव हैं, तो जानते हैं कि हम क्षेत्र हैं, क्षेत्रज्ञ हैं, आत्मा हैं। और एक सर्व क्षेत्रे सुभारत, सबके क्षेत्रों में रहने वाले भगवान हैं। श्री भगवान कहते हैं कि क्षेत्र इस शरीर को और इसमें रहने वाला मैं जो जीव आत्मा है और जो इसको मानता है कि मैं हूं, तो उसको आत्मा को जानना, और सब क्षेत्रों में जो व्यापक शील है उन मुझको जानना, यही ज्ञान है। तो इस प्रकार से जो ज्ञान में हो जाता है वह सबमयी स्थित, वह मुझ में स्थित हो जाता है। मन भगवान में स्थित हो जाता है, भगवत स्वरूप हो जाता है, उससे और मुझसे भेद नहीं रहता है। जैसे मैं सच्चित आनंदमय हूं, उसी प्रकार से वह अभी मुक्त हो जाता है। और लेकिन यह तो स्थिति है, लेकिन यह स्थिति कैसे प्राप्त होती है? हमें कुछ भी सुख मिले, दुख मिले, हानि हो, लाभ हो, उसमें हम अक्षुब्ध रहें और उसका बिल्कुल हमें वो प्रभावित न करे, उसे निर्लिप्त रहें, उसे अलग रहें, यह सत्ता तो हम लोगों में आती नहीं है, ऐसी अवस्थिति तो आती नहीं है। दो बात कोई बोल दिया, दो गाली दे दिया तो लहक करके हम लोग आग बबूला हो जाते हैं, क्या क्या होता है। लेकिन बहुत लोगों में ये स्थिति आती है। किनके द्वारा ये प्राप्त होती है ये स्थिति, इसकी भगवान बतला रहे हैं कि यह जो स्थिति है कि किसी भी प्रकार से प्रकृति के गुणों से क्षुब्ध अक्षुब्ध न होना, यह स्थिति प्राप्त होती है। जैसे मोटे रूप से हम देखते हैं जट भरत जी का उपाख्यान भागवत में, उनका साफ हो जान रहे हैं कि हमको बलि भद्रकाली के सामने बलि देने के लिए लाया गया है, और हमको जैसे पशु की पूजा किया थे उसे हमको खाने पीने के भी लोग सामान दे रहे हैं और चंदन आदि सब कर रहे हैं और हमारा गर्दन कटने वाला है, ये जान रहे थे। लेकिन इतने विषम परिस्थिति में भी उनकी स्थिति थी कि उनको इससे कोई क्षोभ नहीं था न कोई विचलन था, क्योंकि आत्मस्थ थे, अपने आत्मस्वरूप में स्थित थे, उनको कुछ नहीं था। और शुद्ध ब्रह्म में स्थित थे, ब्राह्मण थे, देवी को बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये इसका गर्दन काटने चाहते हैं, तो वो मूर्ति फोड़ करके और जो उनका वध करना चाहते थे उन्हीं का वध कर दिया देवी जी ने। तो यह सत्ता होती है कि आदमी ब्रह्म निर्वाण की स्थिति में होकर के तीन गुणों से अप्रभावित रहता है। लेकिन किसके द्वारा यह ज्ञान प्राप्त होता है, कौन इसको प्राप्त कर सकता है? तो भगवान बतला रहे हैं कि यह स्वधर्मेण माम नित्य, जो अपने धर्म के द्वारा, स्वधर्म जो उसका खास धर्म है, उसके द्वारा मुझे नित्य निराशी, अपने तृप्ति के लिए नहीं, अपने सुख, अपने को आशीर्वाद से लेने के लिए नहीं, बल्कि हमें सुख हो या दुख हो या हानि हो लाभ हो, जो इसकी आकांक्षा नहीं रखता है, निराशी, आशावान नहीं है, आशाहीन है कि हम सुखी हो जाएं, वो है निराशी, निष्काम। कोई हमारे इंद्रियों को सुख मिले, हम सुखी हों, हम तृप्त हों, हम फायदे में रहें, इस प्रकार की जिसके मनो स्थिति नहीं है। और श्रद्धयान्वित और श्रद्धा से युक्त है। श्रद्धा जो शास्त्र में गुरु और गुरु के वचन में विश्वास है उसको श्रद्धा कहा जाता है। तो सद्गुरु और शास्त्र सब कहते हैं कि एकमात्र भगवान भजनीय हैं और भगवान विष्णु ही नारायण ही हमारे सेव्य हैं, हम उनके दास हैं, सेवक हैं। इस प्रकार के हम भगवान के नित्य दास हैं, इस भावना से, श्रद्धा से जो अन्वित है, युक्त है। भजते सनकैस्तस्य मनोराजन प्रसिद्ध। इस प्रकार से भगवान को संतुष्ट, भजते भगवान को संतुष्टि करता है, भगवान को तृप्त करने का, भगवान सुखी हो, भगवान को हर्ष हो, भगवान को तृप्ति हो, इस हिसाब से जो भजता है तो सनकई धीरे धीरे तस्य मनोराजन प्रसीदति, उसका मन प्रसन्न हो जाता है, मन उसका लुब्ध। यदि किसी बात के लिए आदमी कामना करता है तो उस वस्तु को पाने के लिए मन लुब्ध हो गया, तो लुब्ध हो गया तो बहुत खेद में पड़ता है, मिल जाए, प्राप्त हो जाए, प्राप्त हो जाए। जब तक से प्राप्त नहीं होती है तब तक से मन क्षुब्ध रहता है, खिन्न रहता है। लेकिन इस प्रकार से जो स्वधर्म के द्वारा भगवान की आराधना करेगा, तो उसके धीरे धीरे काम कामनाओं के जो बाण हैं, जो चोट करते हैं जीव पर, घाव करते हैं, जैसे बाण मारा जाता है तो आकर के शरीर को बेधता है, उससे दुख होता है, उसी प्रकार से काम को मार्गण कहा गया है, बाण कहा गया है। हमें कोई इच्छा होती है, तत्काल उस इच्छा से हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है और उस चीज के पाने के लिए व्यथित हो जाता है, कष्ट में पड़ जाता है। तो जो कष्ट में, वो प्रसन्न कहाँ से होगा, वो तो उसके चक्कर में पड़ गया और उसमें वह दुखी रहता है। तो उसकी धीरे धीरे कामनाएं शांत होती हैं, वो निष्काम होता जाता है। और जो बिनु संतोषन काम नशाही आ काम अक्षत सुख सपन होना है, कामनाओं के रहते रहते स्वप्न में भी सुख नहीं होगा। काम जहां पर है, अपने को सुखी करने के लिए कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, तो वहां जीव दुखी रहता है। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि जो अपने स्वधर्म के द्वारा और अपने को तृप्त इंद्रिय भोगों के पीछे सकाम होकर के नहीं रहता है और श्रद्धा से युक्त रहता है और मेरा भजन करता है, वह धीरे धीरे उसका मन प्रसन्न हो जाता है। और जब मन प्रसन्न हो जाता है तब तो ये चार श्लोकों में इधर बतलाए हैं कि कैसे कैसे करने से मन प्रसन्न। यहां पर भगवान कहने की स्वधर्म की बड़ी महिमा है, स्वधर्म के द्वारा हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। और जब स्वधर्म के द्वारा हम भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान हमारा मन प्रसन्न होगा। और एवं प्रसन्न मनसी भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञान, भगवत तत्व विज्ञान भगवत तत्व विज्ञान जागृत होता है, लेकिन मन प्रसन्न हो है तो स्वधर्म क्या है जिसके द्वारा भगवान का भजन किया गया। और प्रभुपाद जी ने यहां पर स्वधर्म है वर्णाश्रम धर्म, कोई भी व्यक्ति कहीं भी है तो एक स्थान पर वह स्थित है। यह बात समझने की है कि जीव एक तो अपने मूल रूप में वह भगवान का सेवक है, भगवान का अंश है, इसलिए भगवान को संतुष्टि विधान करने वाला है। लेकिन वही जीव जब देहस्त हो गया है, शरीर के उपाधि से ग्रस्त है, तो उपाधि के अनुसार उसको कार्य करना पड़ता है। उस पर जैसी उसकी उपाधि है उसके अनुरूप उसको कार्य करना पड़ेगा, उसी को स्वधर्म कहा जाता है। तो मनु जीव वास्तव में शुद्ध है लेकिन वह उपाधि ग्रस्त हुआ है, मनुष्य बना है, और मनुष्य में भी उसकी चार कैटेगरी है, ब्राह्मण हो सकता है, क्षत्रिय हो सकता है, वैश्य हो सकता है और शूद्र हो सकता है, या इससे अलग मतलब चार वर्ण हैं और चार आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो कोई भी व्यक्ति इसी चार के अंतर्गत रहता है तो वह जिस पोजीशन में है, यदि वह ब्राह्मण के पोजीशन में है तो ब्राह्मण के अनुसार उसका धर्म बनता है, उसकी ड्यूटी बनती है, कार्य बनता है कि ब्राह्मण को यह करना चाहिए, और उसको वही उसका स्वधर्म होता है। फिर क्षत्रिय है तो ब्राह्मण से भिन्न उसका स्वधर्म बनता है, क्योंकि वो क्षत्रिय हो गया तो क्षत्रिय को युद्ध आदि, जबकि ब्राह्मण को शांति होता है और क्षमा आदि गुण होते हैं, विद्या आदि होते हैं, लेकिन वहीं पर क्षत्रिय के लिए कि उसको युद्ध से मुकरना नहीं चाहिए और पीठ नहीं दिखाना चाहिए, उसका यह स्वधर्म हो जाता है। वैसे का उसके धन आदि कमाने में, बिजनेस व्यापार करने में रुचि रखनी चाहिए, और शूद्र का धर्म होता है कि सबकी सेवा करे। तो इस प्रकार से जो वर्ण चार वर्ण के हैं उनका स्वधर्म होता है, और उसके अनुसार वो जब कार्य करते हैं और कार्य में भी अपने सुख के लिए नहीं, बल्कि जिसने हमें इस कार्य में इस जगह पर स्थापित किया है, जो भगवान यह संसार बनाया है और हमको भी बनाया है, उसको संतुष्ट करने के लिए, उसे उसकी आज्ञा मान करके उसको प्रसन्न करने के लिए जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है, तो उससे भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं। धर्म स्वनुष्ठित पुंसा विश्वक्सेन कथा नोत्पादय श्रम है वही केवल। संसिद्धि हरितोषण, धर्म का संसिद्धि क्या है कि हरितोषण, भगवान को संतुष्टि हो जाए, भगवान सुखी हो, भगवान को संतोष जाए कि नहीं है ठीक, तो वही स्वधर्म होता है। ब्रह्मचारी है तो उसका स्वधर्म होगा पढ़ना लिखना और वेदाध्ययन करना, गृहस्थ है तो उसका गृहोचित कार्य, धनार्जन और परिवार का पालन आदि कार्य होता है, फिर वानप्रस्थ है तो उसको घर से उपराम होकर के भगवत भजन में और वन का सेवन करना होता है, और सन्यासी है तो सन्यासी का स्वधर्म होता है कि समस्त आसक्तियों को मिटा करके और भगवान की सेवा के लिए सदा प्रयत्नशील रहना, यति उसको कहते हैं, हमेशा यत्नशील रहता है तो उसका स्वधर्म होता है। इस प्रकार से वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए और नित्य भगवान की का भजन करते हुए जो अपने स्वरूप को समझ करके और फल की आशा नहीं रखता है, वह व्यक्ति धीरे 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 उसका मन प्रसन्न हो जाता है, दुखी नहीं रहता है, शुद्ध नहीं रहता है। और प्रसन्न मन हो जाता है तो भगवत भक्ति संगत उस वो भगवान में आत्मा में अवस्थित हो जाता है, अपने स्वरूप को जान जाता है और भगवान में उसकी स्थिति हो जाती है, प्राकृत गुणों से क्षुब्ध नहीं होता है। उसी को भगवान यहां पर कह रहे हैं कि अपने स्वधर्म का पालन करो, स्वे स्वे कर्मेण अभिरतः संसिद्धिं, स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नर। अपने अपने स्वे स्वे अपने अपने काम में लग करके लगा हुआ व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त करता है। और स्वकर्मण अभिरतः संसिद्धिं यथा विन्दति तच्छ, और अपने अपने काम में रह करके व्यक्ति सिद्धि को जैसे प्राप्त होता है उसको सुनो, भगवान गीता में उपदेश किए हैं। तो उसमें बतलाते हैं कि यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम इदं ततम स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। येन सर्वम यतः प्रवृत्तिर्भूतानां, जितने भी भूत हैं जीव हैं इनकी प्रवृत्ति इस संसार में, जो कुछ भी ब्राह्मणोचित क्षत्रियोचित वैश्योचित शूद्रोचित या ब्रह्मचर्य आश्रम के उचित गृहस्थ के वानप्रस्थ के सन्यासी के उचित जो भी है, यतः प्रवृत्ति जिनके द्वारा ये प्रवृत्ति प्राप्त होती है, भगवान ने ही शास्त्र में उपदेश किया है कि ब्राह्मण को ऐसा करना चाहिए, क्षत्रिय को ऐसा करना चाहिए, वैश्य को ऐसा करना है, शूद्र का यह धर्म होता है और ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी इसका यह धर्म होता है। तो यतः प्रवृत्तिर्भूतानां, संसार में जिसके द्वारा मनुष्य जीवों का प्रवृत्ति कर्म निर्धारित होता है, और येन सर्वम इदं ततम, और जिन भगवान के द्वारा यह सारा संसार ततम विस्तारित हुआ है, उन भगवान को स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धि मिलती, उन भगवान को अपने कर्म के द्वारा जो हमारे हमें उन्होंने ड्यूटी दिया है उस कर्म के द्वारा उनकी पूजा करके प्रत्येक मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर सकता है, सिद्धिम बिंदति मानव, मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। हमें भगवान ने बनाया है इस, और हमें जो कुछ भी दिया है भगवान ने निर्देशित किया है, और हमें यह करना है यह नहीं करना है, जो धर्म है वो ड्यूटी है, हमारा क्या कर्तव्य होता है। हम जैसे यहां हैं, हम कथा कहने के लिए बैठे हुए हैं, हम वक्ता हैं और आप लोग सुनने वाले हैं, आपका धर्म होता है कि आप सुनिए, और हमारा धर्म है कि जो शास्त्र में कहा गया है उसको हम कहें। तो अपने कर्म को अपने कर्म को करना है, इसी को धर्म कहा गया है, और इसी से उसकी स्थिति बनती है, वो यही उसको धारण। अब हम यहाँ पर कथा कहने के लिए बैठे हैं, हम कथा न कहें तो हम अपने धर्म में नहीं, हम वक्ता हो ही नहीं सकते, हम दूसरे कुछ हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, दूसरा हो जाएंगे, क्योंकि हमको कथा कहने के लिए बैठाया गया है। तो हमारा धर्म है कि हम कथा कहने वाले के अनुरूप हम कुछ उपदेश करें या बोलें समझाएं, और आप लोगों का धर्म होता है कि आप लोग श्रोता हैं तो आप लोग सुनिए समझिए। हर जगह है यह धर्म पोजीशन और उसके अनुसार कर्तव्य का निर्धारण हो जाता है, और उसको शास्त्र के द्वारा भगवान ने निर्धारित किया है। तो हर व्यक्ति का स्वधर्म है, उस अपने देखिए, भगवान गीता में कहते हैं कि स्वधर्म जो है श्रेयान स्वधर्म विगुण है, जो अपना कर्तव्य है उसमें विगुण है, उसमें अच्छा गुण नहीं है, बढ़िया नहीं है, खराब गुण है। श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मात् सुनुष्ठिता, और हमारा धर्म है लेकिन खराब है। अर्जुन का धर्म था, अर्जुन का धर्म क्या था कि भीष्म पितामह को मारो, द्रोण को मारो, शल्य को मारो, क्षत्रिय हो, मारना तुम्हारा धर्म। कितना खराब कर्म था, किसी को किसी की हत्या करना, युद्ध में मार देना, ये कितना भयंकर बुरा चीज है। लेकिन भगवान कहते हैं कि श्रेयान स्वधर्मो विगुण, बुराई है उसमें, खराब है, हत्या मारे कोई पूजा पाठ है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि तुम यदि ऐसा करोगे तो मुझको प्रसन्न करेगा, स्वर्ग में जाएगा, तुमको मैं स्वर्ग दूंगा या राज्य दूंगा। और यदि ऐसा नहीं करते हो, तुम युद्ध से हटते हो, तो सो रहना तुम्हारी गलती है। तो स्वधर्म श्रेयान स्वधर्म विगुण, दोष भी हो बुरा भी लगता हो लेकिन वह श्रेयान कल्याणकारी है। पर धर्मात् सुनुष्ठिता, और जो दूसरे का धर्म है, दूसरे का कार्य है, वह अनुष्ठान करने में बहुत बढ़िया हो लेकिन है दूसरे का काम, तो उससे वह तुम्हारे काम की चीज नहीं है, उससे तुम्हारा श्रेय नहीं होगा। स्वकर्मण अभिरतः संसिद्धिम लभ, सिद्धिम बिंदति मानव, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धिम बिंदति मानव। अपना जो कर्म है, अपना जो धर्म है, उसके द्वारा भगवान को संतुष्ट करने के लिए करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है। अपना जो कर्म बनता है भले ही सदोष हो लेकिन वह भगवान की पूजा हो जाएगा। लेकिन दूसरे का करने में बहुत अच्छा हो लेकिन अपना स्वधर्म नहीं, अपना कर्म नहीं है, तो उससे भगवान नहीं प्रसन्न होते हैं। इस संसार में तो स्वधर्म का बहुत भारी महत्व है, स्वधर्म का आचरण और भगवान की पूजा करना अपने धर्म का। जैसे शास्त्र में स्त्रियों का स्वधर्म कहा गया है पति की सेवा करना, पति से प्रेम रखना, उसकी सेवा करना, उसका स्वधर्म है। पति और पत्नी के बीच जो संबंध होता है बहुत बढ़िया संबंध नहीं है, विगुण ही है। मैथुनादिक व्यवहार ये सब क्रियाएं हैं धर्म, लेकिन भगवान ने उसको धर्म बनाया कि नहीं, स्त्री का धर्म है कि वह पति की सेवा करे। जैसे पुजारी भगवान की सेवा करता है उसी प्रकार से स्त्री अपने पति की सेवा करे, और यदि उसको करती है तो सती होती है, और किसी भी साधु संत महात्मा से उसकी महिमा कम नहीं होती है। तो इस प्रकार से स्वधर्म जो है वह विगुण है, फिर भी उसके द्वारा भगवान की पूजा, भगवान को संतुष्ट करने के लिए उसको किया जाए तो भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। और जब भगवान संतुष्ट हो जाते हैं तो आदमी अपने स्वरूप में स्थित होता है, उससे मन प्रसन्न हो जाता है। और मन जब प्रसन्न होगा तो यदा रजस्तमो भावा काम लोभादय से चेत एतर अनाभिद्धम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति, जब काम क्रोध आदि के विकारों से वह चित्त अनाविद्ध रहता है तो उसकी प्रसन्नता प्राप्त होती है। और जब अनाविद्ध काम क्रोध आदि भावों से अनाविद्ध हो जाएगा तो उसमें भगवान के अपने आप स्फूर्ति होने लगती है, अनुभव होने लगता है। तो इसी को, इसी बात को, अब जब भगवान की स्तुति होगी, उनकी भक्ति होगी, तो यह स्थिति प्राप्त की जा सकती है। भगवान जिस स्थिति को कह रहे हैं, यह ज्ञान और ज्ञान मिश्र भक्ति के जो कि यहाँ पर उपदेश किया जा रहा है जीव का। प्रभुपाद जी ने कहा है कि हमें अपने घरों में भगवान की श्री विग्रह रखना चाहिए, श्री विग्रह रखना चाहिए, और उसकी नवधा भक्ति के द्वारा पूजन करना चाहिए। यह भी सबका स्वधर्म होता है, भगवान की भक्ति करना, पूजा करना सबका स्वधर्म है। मनुष्य हैं तो ये काम करना अपना धर्म है, और इसको करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।